शीर्षक कबीर की उपलब्धि, सफलता, महत्ती भूमिका और अनुपम योगदान। प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र का उत्तरदायित्व है कि वह आने वाली पीढ़ी को सच्चरित्र और धर्म पर आधारित अभ्युदय के लिए तैयार करे। कबीर की कसौटी सम्यक चरित्र है। कबीर जीवन भर जुटे रहे अपने लक्ष्य की पूर्ति में, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह गौर करने की बात है कि सिर्फ संत कवि होने के नाते ही कबीर इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उनके युग में और उनसे पहले भी अनेक संत कवि हुए हैं। कबीर के कथ्य और उनके कथ्य में क्या भेद है? सभी नाम स्मरण सदगुरु सत्संग सुसुपना समाधि की महत्ता बताते हैं। सभी पूजा स्थलों, पूजा मूर्ति, पाखंड, बाह्य आचरण, जाति पाति, ऊंच नीच के विरोधी हैं। सभी माया को बंधन मानते हैं। मुक्ति कामी है, साधक है, दलित है और छोटे मोटे श्रम में से परिवार पालते हैं, तब साधु चरित्र है। यह भी असंभव नहीं है कि कबीर से अधिक ज्ञानी तत्ववेत्ता साधक उस युग में रहे हो, और कई तो पाखंडों पर प्रहार करने में कबीर से भी अधिक कठोर हैं। यानी सबकी बातें और घाते समान थे, फिर भी कबीर उनके बीच से उभर कर क्यों आए और लगभग पूरे भारत में इस कदर कैसे लोकप्रिय हुए? कबीर पर समग्रता से विचार करते हुए उनकी आध्यात्मिकता, कवित्व और विद्रोही चेतना जोड़कर देखना इसलिए जरूरी है कि ये सब मिलाकर एक ऐसे सामाजिक न्याय को जन्म देते हैं जो द्वेष, घृणा, असहिष्णुता आदि को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि सहिष्णुता, संयम, आत्मबोध और सत्याग्रह से स्थितियों को बदलने की कोशिश करता है। कबीर के साथ महात्मा गांधी की संभवतः इसलिए तुलना श्री पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने की है। उन्होंने एक लेख में लिखा है, कबीर और गांधी। गांधी में भी कम विद्रोही नहीं है, परंतु उन्होंने भी निर्भक्ता, संवेदना, संयम, अनुशासन, सत्याग्रह, प्रेम आदि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की पहल की थी। कबीर की करुणा और विद्रोह गांधी में किस कदर प्रतिबंधित होता है, इसका उदाहरण देते हुए बड़तवाल कहते हैं, गांधी जब लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गरीबों पर भाषण दे रहे थे तो लगता था कि उनके मुख में कबीर बोल रहे हैं। इन्हीं मानव मूल्यों के लिए ऐसे ही संवेदना, उदारता, करुणा, निर्भयता, आत्मविश्वास और सामंजस्य के लिए कबीर को एक समग्रता में पुकारने पर संभवतः आज की जटिल समस्याओं का कुछ समाधान मिले, क्योंकि सिर्फ धर्म और सिर्फ विद्रोह द्वारा हिंसा को संस्थागत रूप मिल जाने से दुष्परिणाम से हम आज खूब परिचित हो चुके हैं। कबीर मानवीय परंपरा की मुख्य धारा है। वह कम दिखते हुए बड़े व्यापक भी हैं। कबीर का काल सर्वव्यापक लिए हुए है, जिसमें संपूर्ण भारत के व्यापक रूप से साहित्य, धर्म, दर्शन, कला में नवीन ऊर्जा दिखाई दी थी। क्या हमारे समग्र राष्ट्र की एकजुटता के साथ मुख्य धारा का अधुनातन रूप भी मिलता है, जिसका श्रेय कबीर को जाता है। कबीर की हर स्तर पर ऐतिहासिक भूमिका रही है। युग पुरुष के रूप में कबीर जहाँ समादृत है, वहाँ कबीर भूत और वर्तमान के बीच प्रभाव में ही धारा है। कबीर बहाव का नाम है, ठहराव का नाम नहीं। बहाव में निरंतर नित नया करने की सहज ऊर्जा होती है। इंसानी जज्बे को स्थापित करने की उद्दाम लालसा, मानव मात्र की मुक्ति का अप्रतिम आंदोलन, शोषण मुक्त समाज निर्माण और बंधनकारी मजहब परस्ती से उपजी दीवारों को तोड़ने का अभियान कबीर का था। इंसान की मुक्ति और उसे विकसित होने का, पूर्ण इंसान बनाने का, प्रेम और स्नेह का, श्रम के मूल्य का, विमल दृष्टि का मार्ग कबीर ने प्रशस्त किया था। आज तो कबीर की प्रासंगिकता कहीं ज़्यादा है, लेकिन सत्ताएं डरती हैं, खौफ धर्म खाते हैं। किताबों में कबीर पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। कबीर किताबों में टिकता नहीं है, वह तो वाक्य में गैलरी से शब्द की खिड़की से कूद कर घर में आप भी जाता है, दिल में उतर जाता है, अनपढ़ माँ और फकीरन बुआ के कंठ में बैठ जाता है। कबीर हमेशा रहते हैं, हर मदद के लिए उठा हाथ दूसरों के दुखों में रोती हुई आंखों में प्रसन्नता में प्रसन्न होने होठों के कबीर होता है। इस तरह कबीर अमीर होते हैं। कबीर की मानव कल्याणी विचारधारा ने समाज के नैतिक और धार्मिक उत्थान में अनुपम योगदान दिया। कबीर के योगदान को समझने के लिए भारतीय साधना के इतिहास को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। इसे समझे बिना हम यह मध्ययुग की साधना को सम्यक रूप से परिचित हो सकते हैं न कबीर के साथ न्याय ही कर सकते हैं। आज हमें कबीर की वाणी अटपटी लगती है, उसमें विषमता और भिन्नता है। इसका कारण यह है कि हम उस महान व्यक्तित्व को केवल आंशिक रूप से ही उद्घाटित करने में समर्थ हो सकते हैं। जहाँ तर्क वितर्क और विज्ञान में विरोध है, वहाँ सत्य साधना और श्रद्धा भक्ति में पूर्ण सामंजस्य मिलता है। पृथ्वी को मथकर आदमी मात्र दो चीज पा सकता है, पहला प्रेम, दूसरा घृणा। जीवन की खुरदरी तलाश में समझ की रूपरेखा विचारों के साथ जुड़कर कल्पनाशील मूल्यों को साहित्य का विषय बनाते रहे। कबीर को समझने के लिए हिंदू मुस्लिम संघर्ष का इतिहास शायद संस्कृति का बाह्य तंत्र है। इस अविश्लेषित इतिहास संस्कृति और नेतृत्व क्रिया की खोज के द्वारा ही संत कबीर द्वारा प्रस्थापित राष्ट्रीय एकता के समन्वित दृष्टिबद्ध का पता लगाया जा सकता है। समाज सुधार और सर्वधर्म समन्वय उनका ध्येय है, जो राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र हो सकता है। मरणशीलता से आगे बढ़कर आणविक विनाश के कगार पर खड़ी मानव जाति के लिए कबीर एकमात्र औषधि है। पूरे विश्व में क्षेत्रीय उठान और स्वार्थ और हिंसा और युद्धों की बेकाबू होड़ बढ़ती जा रही है। विश्व में सबसे बड़ा उद्योग आज अस्त्र शस्त्र की खरीद फरोख्त बन चुकी है। युद्ध मंडियों की खोज और माल की खपत शक्ति संतुलन को भी संतुलित बना चुकी है। इराक कुवैत युद्ध के साथ साथ रूस का बिखराव बाद में चरमरा ढेर होता हुआ ढांचा इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। युद्ध उन्माद के ही कारण विश्व स्तर पर अपहरण और हत्या का कारगुजारियां बढ़ और फैल रही हैं। भारत तक की शांति सहिष्णुता दया सहानुभूतियां मानसिकता में गहरी सेंग लग चुकी है। यहाँ के लोकतंत्र में आज अपहरण हिंसा हत्या तक को स्वीकृति मिल चुकी है, तो दूसरी ओर सांप्रदायिक टकराव अयोध्या के राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटने के कारण बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारत को ही नहीं विश्व को भी कबीर और सिर्फ कबीर के सही रास्ता दिखा सकते हैं, बचा सकते हैं। कबीर के पास कालजयी सोच ही नहीं मानवतावादी दृष्टि और समुद्र से गहरी संवेदना है। मानव मुक्ति के लिए विस्तीर्ण आकाश है तो अस्तित्व रक्षा के लिए शिष्य श्यामला अच्छा जीवन कोशमय धरती। कबीर प्रेम और करुणा के अवतार हैं। महलों की बेचैनी और शोषण के सामने खड़े हुए झोपड़े का संतोष और ईमान है।